नमस्कार भारत, आज है 29 जून शुक्रवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। अमेरिका में एक अखबार के दफ्तर पर बंदूकधारी ने हमला किया, कम से कम 5 लोगों की मौत। क्या बीतती होगी उन भारतीय दलितों पर जिन्हें परदेश में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
जो भी डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में होता था आपके नाम के कारण, आपकी जाति के कारण, वो सेम यहाँ पर आने के बाद भी होता है।
अमरनाथ यात्रा में मुसलमान भी चलते हैं हिंदुओं के साथ।
यहाँ कोई डरने की बात नहीं है, खुला है, बिंदास है, जब मर्जी आए। यहाँ सभी भाइयों का साथ मिलता है, कश्मीरी भाई हमारे तो सहयोग से लेके चलते हैं।
और सुनिए,
अभी भी गवर्नमेंट बैंक में तुरंत हमारा खाता नहीं निकलता है क्योंकि हमारे पास खुद का घर नहीं है।
दिक्कत बैंक में खाता खुलवाने की, सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत कौर से। अमेरिका के मैरीलैंड प्रांत में कैपिटल गजट नाम के एक स्थानीय अखबार के दफ्तर पर हमला हुआ है। यहां गोलीबारी में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है। स्थानीय खबरों के मुताबिक बंदूक के साथ पकड़ा गया ये गोरा शख्स पुलिस का सहयोग करने से मना कर रहा है और उसने अपनी उंगलियों को भी छील लिया है ताकि उंगलियों के निशान से उसकी पहचान ना हो सके। एक संवाददाता के मुताबिक बंदूकधारी ने कांच के दरवाजे को निशाना बनाया जिसके पीछे कई कर्मचारी मौजूद थे। स्थानीय पुलिस के प्रमुख बिल क्रैम्प ने पत्रकारों को बताया, हमारी जानकारी के मुताबिक 5 लोगों की मौत हुई है, कई दूसरे लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुछ देर में हम आपको और जानकारी देंगे। ये थे पुलिस प्रमुख बिल क्रैम्प के शब्द। लेबनान में रह रहे करीब 400 शरणार्थी सीरिया में अपने घर वापस लौट गए हैं। सीमा से लगने वाले आरसाल शहर में रह रहे परिवारों ने सामान ट्रकों में लादकर सरहद पार की। ये बिरला मामला है जब गृह युद्ध की वजह से विस्थापित हुए लोग दोबारा स्वदेश लौट रहे हैं। काफिले में मौजूद एक शख्स ने कहा कि वो अपने घर लौट कर नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। उन्होंने कहा, मैं अपने घर, अपने देश वापस लौटना चाहता हूं। मैं फिर से अपने परिवार, भाइयों और दोस्तों के साथ अपने प्यारे वतन में रहना चाहता हूं। ये थे एक शरणार्थी जिहाद खारतोष के शब्द। प्रवासियों के मुद्दे पर ब्रसेल्स में अहम बैठक हुई। देर रात तक कई मसलों पर चर्चा होती रही, लेकिन इटली ने कहा है कि अगर प्रवासियों की समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वो सम्मेलन के साझा बयान को वीटो कर देगा। यूरोपीय संघ के बाकी देशों ने इटली को मनाने की काफी कोशिश की। दरअसल अफ्रीका से आने वाले शरणार्थी सबसे पहले इटली में ही जाते हैं। इटली के प्रधानमंत्री जुसेपे कोंटे ने मांग की है कि बाकी यूरोपीय देश भी उनका बोझ साझा करें और प्रवासियों को अपने यहां शरण दें। वहीं जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि प्रवासियों का मुद्दा यूरोपीय संघ के लिए निर्णायक हो सकता है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल आब्दी ने आदेश दिया है कि दोषी करार दिए गए सभी चरमपंथियों को फांसी दे दी जाए। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने 8 लोगों को बंधक बनाकर उनकी हत्या कर दी थी, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने ये आदेश सुनाया। इराक में 300 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है, इनमें से 100 महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री आब्दी ने कहा कि सुरक्षा बल 8 लोगों की मौत के जिम्मेदार जिहादी समूह से बदला लेंगे। बुधवार को राजधानी बगदाद के उत्तरी इलाके में मुख्य सड़क पर बंधक बनाए गए लोगों के शव मिले थे। मैक्सिको में बीते 9 महीनों में अब तक 130 से ज्यादा नेताओं की हत्या कर दी गई है। ये सभी नेता रविवार को होने वाले आम और संसदीय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। मैक्सिको के एक कंसल्टेंसी ग्रुप ने पाया कि मरने वालों में ज्यादातर स्थानीय नेता थे जिन पर ड्रग्स माफियाओं ने हमले किए। हत्या का ताजा मामला बुधवार को सामने आया जब चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक अंतरिम मेयर की हत्या कर दी गई।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल पर फेसबुक पर भी सुन रहे हैं लाइव। जैसा कि अभी आपने समाचारों में गुरप्रीत कौर से सुना, अमेरिका में एक अखबार के दफ्तर पर बंदूकधारी ने हमला किया है, गोलियां चलाई हैं जिसमें कम से कम 5 लोग मारे गए हैं और कुछ अन्य लोग घायल हुए हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी को कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। इरम, अखबार के दफ्तर पर किसने हमला किया, क्यों किया, क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास?
जी बिल्कुल, पुलिस ये कह रही है कि एक वाइट मेल जो है, उन्होंने जो कि जिनकी उम्र बताई जा रही है कि 30 में है, मैरीलैंड में जो एक लोकल न्यूज़पेपर है उसके दफ्तर पर शूटिंग की और कहा यह जा रहा है कि इस न्यूज़पेपर को पहले से थ्रेट्स दी जा रही थी और ये एक टारगेटेड हमला बताया जा रहा है। और जो हमलावर है जिसने अटैक किया, एलिजिडली बताया जा रहा है कि उसने जो ग्लास डोर है उसकी उस पार से शूटिंग की। शूटिंग में 5 लोग जो हैं बताया जा रहा है कि वो मारे जा चुके हैं और कई जो हैं वो घायल हुए हैं। और जैसा कि आपने भी कहा कि उनकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है। पुलिस का ये कहना है कि हमलावर जो एलिजिडली जिसको बताया जा रहा है, जिस पर शक किया जा रहा है कि उसने हमला किया है, उसने CBS न्यूज़ कह रही है कि अपने फिंगर टिप्स जो हैं उनको भी डैमेज किया है ताकि आइडेंटिफाई ना किया जाए कि उसका नाम क्या है और वो कौन है। और अभी तक पुलिस ने ये डिटेल्स नहीं बताई कि जिस बंदे ने ये हमला किया है उसका नाम क्या है, लेकिन उन्होंने एक ऐसे बंदे को अपनी हिरासत में ज़रूर लिया है और उससे तफ्तीश हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि वो पुलिस ऑफिसर्स के साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, तावन नहीं कर रहा। और अभी मजीद डिटेल्स जो हैं इस हमले के बारे में आनी है सामने। लेकिन जब वो हमला करने गया तो उसके पास जो है जाली फेक ग्रेनेड्स भी थे और बॉम्ब भी जाली उससे मिला, जिसको पुलिस ने अपनी हिफाजत में ले लिया है। और ये हमला जो है आज हुआ मैरीलैंड के इलाके में, जहाँ पर ये लोकल दफ्तर जो है न्यूज़पेपर का डिजिटल वेबसाइट भी चला रहा है और अखबार भी चलाता है, उस पर ये हमला किया गया।
इरम, आपको ध्यान होगा, 1 महीने पहले की बात है, 1 महीने से शायद 2-4 दिन आगे पीछे होंगे, एक स्कूल पर भी बंदूकधारी ने हमला किया था, तब कुछ बच्चे मारे गए थे और अभी फिर एक इसी तरह की घटना सामने आई है। क्या इसे अमेरिका में गन कल्चर का एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण कहा जा सकता है?
जी बिल्कुल, देखें अमेरिका में एक जो बहुत बड़ी बहस हमने देखा इस साल रही वो यही थी कि स्कूलों पर जो हमले हुए हैं, पार्कलैंड में जो हमला हुआ, सेंटर फे में जो हमला हुआ स्कूल के बच्चों पर, जिसमें जो है एक फॉरेन स्टूडेंट जो कि पाकिस्तानी थी वो भी मारी गई। तो गन वायलेंस जो है एक इतना बड़ा इशू है अमेरिका में, लेकिन उसके उसको रोकने के लिए कवानीन जो है, लॉज जो है, उन पर हमेशा से रिपब्लिकन, डेमोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स रही हैं। और जो NRA जिसको कहा जाता है, जो कि यहाँ की एसोसिएशन है जो कि गन लॉज या गन की खरीदो फरोख्त में जो कि काम करती है, वो हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग लॉबी मानी गई है और वो हमेशा से ये कहती रही है कि गन जो है वो अमरीकियों का हक है और उनके पास ये होनी चाहिए। लेकिन जो लिबरल प्रोग्रेसिव अमेरिकन हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक आप गन हासिल करने के प्रोसेस को सख्त नहीं करेंगे, तब तक जो है स्कूल के बच्चे हों या इस तरह दफ्तर पे हमले जो हों या आम गलियों में जो दफ्तर आम गलियों में जो हमले होते हैं, गन वायलेंस जो होती है वो जारी रहेगी। लेकिन गन वायलेंस के अराउंड कवानीन को या लॉज को सख्त करना जो है ये एक मुश्किल मरहला जो है अमेरिका में रहा है। और अभी भी हम यही देख रहे हैं कि राय बटी हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वो विक्टिम्स के साथ हैं, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की कि वो किस तरह से यकीनी बनाएंगे कि इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो।
बहुत शुक्रिया। अमेरिका में एक अखबार के दफ्तर पर बंदूकधारी ने हमला किया, कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है, खबर पर जानकारी दे रही थी वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता इरम अब्बासी। और श्रोताओं, सोचिए कि आप रोजी रोटी के लिए 7 समंदर पार जाते हैं, अपना वतन छोड़कर जाते हैं, ये सोचकर जाते हैं कि वहाँ आपके साथ यहाँ जैसा भेदभाव नहीं होगा, लेकिन परदेश में भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाए, वैसा ही भेदभाव किया जाए तो आप पर क्या बीतेगी। ये खबर इसलिए क्योंकि एक सर्वे बताता है कि अमेरिका में रहने वाले दक्षिण एशियाई मूल के दलितों के साथ अमेरिका में भी भेदभाव किया जा रहा है। और जानकारी एक बार फिर दे रही हैं इरम अब्बासी।
मेरा नाम दिलीप मस्के, हम लोग दलित कम्युनिटी से अंदर जा सकते हैं?
आप अंदर नहीं जा सकते।
ये न्यू जर्सी में एक मंदिर के बाहर दलित जाति के दलीप मस्के और मंदिर के रखवाले के दरमियान होने वाली बातचीत है। जब दलितों के खिलाफ अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन की रिपोर्ट सामने आई तो मैं इनसे मिलने न्यू जर्सी गई। मैं उनको लेकर इस मंदिर आई ताकि ये जान सकूं कि क्या उनको अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी या नहीं, लेकिन मंदिर के दरवाजे से ही उन्हें वापस लौटा दिया गया। दिलीप 2005 में उस वक्त मुंबई से यहाँ अमरीका आए थे जब एक दलित लड़की के साथ रेप और फिर उसके कत्ल का मुकदमा लड़ने पर इनको जानलेवा धमकियाँ मिलना शुरू हुई, घर पर पथराव भी हुआ। लेकिन अमेरिका में जिस कंपनी में नौकरी मिली उसके ऊंची जाति के समझे जाने वाले हिंदू मालिक के हाथों भी डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ी।
जो भी डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में होता था आपके नाम के कारण, आपकी जाति के कारण, वो सेम यहाँ पर आने के बाद भी होता है। जैसे कि जब हम मेरा सबसे पहला वीजा जिस कंपनी ने किया था उसका ओनर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता है जो अपर कास्ट कही जाती है, थेवर कम्युनिटी कही जाती है, गाली देता था या फिर उनको वेतन नहीं देता था, या मेरे साथ और 10 लोग थे हमारे ग्रुप में, तो आप सफाई करने के लायक है, यहाँ पर काम करने के लायक नहीं है, सबके साथ उसने वही व्यवहार किया था, इसके कारण हमें कोर्ट में जाना पड़ा था।
अब अमेरिका में पहली बार ऐसा सर्वे किया गया है जिसमें पता चला है कि अमेरिका में रहने वाले 3 में से हर एक दलित स्टूडेंट को ऊंची जाति के हिंदू स्टूडेंट की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। सर्वे में बताया गया है कि 3 में से हर 2 दलित जात के भारतीयों के साथ काम पर बुरी तरह पेश आया गया। दलित होने की वजह से 40% ने बताया कि उन्हें मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया। इस सर्वे के लिए 1500 से ज्यादा दलितों के साथ बातचीत की गई। ये सर्वे साउथ एशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इक्वालिटी लैब की जानिब से किया गया। इस इदारे की सरबराह ने BBC से बात करते हुए बताया, वो कह रही हैं कि हमें एक चीज को समझने की बहुत जरूरत है कि जनूबी एशिया के लोग दुनिया भर में जहाँ भी जाते हैं वो अपनी जाति आइडेंटिटी को साथ लेकर आते हैं। हमारे अपने देशों में इस मसले को आज तक हल नहीं किया जा सका और यहाँ अमेरिका में हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस में भी डिस्क्रिमिनेशन अब बहुत फैल चुकी है। 70 की दहाई में जो हिंदू यहाँ अमेरिका आए वो बेहतर जिंदगी चाहते थे। जब उन्होंने यहाँ आकर अपने हिंदू कल्चर को प्रमोट किया, अपने इदारे बनाए, तो वो जाति की वजह से ऊंच नीच के लेंस से ही बनाए ताकि इंडिया में मिलने वाला कास्ट प्रिविलेज उनको यहाँ भी मिल सके। ये थे उनके अल्फाज। हिंदू नेशनलिस्ट और दलितों के दरमियान कैलिफोर्निया में स्कूल की किताबों पर भी लड़ाई चल रही है। हिंदू नेशनलिस्ट चाहते हैं कि कास्ट सिस्टम को हिंदू मजहबी प्रैक्टिस की बजाय पूरे रीजन की प्रैक्टिस कहा जाए, जबकि दलितों का कहना है कि हिंदू नेशनलिस्ट ऐसा करके हिंदू मजहब के इतिहास को एक तरीके से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रुति न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में PhD कर रही हैं। BBC से बात करते हुए उन्होंने कहा,
हम लोग ने इसको इग्नोर किया है बहुत टाइम के लिए और इग्नोरेंस के चक्कर में यह बहुत बड़ा इशू बन गया है। कैलिफोर्निया में पॉलिसीज, एजुकेशन, टेक्स्ट बुक्स, पॉलिसीज की टेक्स्ट बुक में क्यों एक सर्टन हिस्टोरिकल पिक्चर पोर्ट्रे करी जाए जो दलित स्टूडेंट्स नहीं देख पाते हैं, बिकॉज उनकी हिस्ट्री एक्चुअली इग्नोर करी गई है उन टेक्स्ट बुक्स में। तो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है जो आपको एम्पावर करता है। आई एम फ्रॉम इंडिया, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, आम आइडियल्स। तो अगर हमारी वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ले ली जाए, दलित ग्रुप से ले ली जाए, तो वो एक उनको एक डिसएम्पावर्ड फीलिंग के साथ रहना पड़ता है। एंड देन अगर आपके राइट्स आपको पता है वायलेट हो गए हैं।
ऐसे वक्त में जब अमेरिकी सियासत और समाज नस्ल की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन से जूझ रहा है, ऐसे में इस सर्वे ने हिंदू बिरादरी के सामने गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। इरम अब्बासी, BBC न्यूयॉर्क।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के मगहर में मौजूद थे। इस जगह को संत कबीरदास की वजह से जाना जाता है। यहाँ संत कबीरदास ने निर्वाण प्राप्त किया था। इसी जगह पर उनकी मज़ार और समाधि भी है। देश की आज़ादी के बाद ये पहला मौका था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने मगहर का दौरा किया। हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र मगहर में कबीर की मज़ार पर पहुँचे और वहाँ मौजूद लोगों से जानना चाहा कि उनके लिए कबीर कितना महत्व रखते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को वो किस तरह से देखते हैं।
कहाँ से आई हैं?
पहाड़ी पर से, माला वाला सामान ले लें समाधि का, यही में प्रोग्राम अमन का।
हाँ कहा के आपके साथ और कितने लोग आए?
तीन जने वाणी या दूठे लाइक के वाणा।
अच्छा, आप कुछ पाठ कर रही हैं? क्या पढ़ रही हैं?
नहीं है? हाँ, चालीसा पढ़ रहे हैं।
कौन चालीसा?
कबीर भजन माला।
ऐसे भीड़ रोज रहती कि आज ही थी यहाँ पे?
अब मोदी जी भाई उनके खातिर सब आयल बा, ढेर मने दर्शन खाते आयल बा, ढेर मने दर्शन उनके खातिर आयल बा, तो मन की नहीं खातिर आयल बा।
किसके लिए?
समाधि माँ, समाधि खाति आयल बा।
किसकी समाधि?
साहिब जी का।
कौन साहिब?
कबीर साहब के समान।
साहब कहते हैं आप लोग, क्या जानती हैं कबीर साहब के बारे में?
अरे मन पढ़ा लिखा लाए तो क्या बताए,
कुछ तो बताया गया होगा ना, यहाँ पे आती है बहुत सारी चीज़ें।
तो पांच नाम बताओ, पांच नाम ले लें समान।
यहाँ हमेशा आते हैं क्या?
हाँ हमेशा आते हैं।
तो कहाँ, दोनों जगह मजार पे भी जाते हैं, मंदिर में?
नहीं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ पर मजार पे।
मंदिर नहीं जाते?
जाते हैं कभी कभी, ज्यादा यहीं बैठते हैं।
क्यों, वहाँ क्यों नहीं जाते?
वहाँ नहीं पसंद है, हिंदू मुस्लिम का ना विवाद है।
तो आप तो हिंदू है ना, आपको तो वहाँ जाना चाहिए।
नहीं, वहाँ यहीं रहते हैं।
अच्छा।
मेरे दिल में यहाँ बसा है, मैं कबीर की इस कबीर को मानता हूँ, उस कबीर को नहीं मानता। वहाँ पखंड, यहाँ पखंड नहीं। अरे प्रधानमंत्री आए थे, जोगी जी आए थे और तमाम जनता आई थी, और भीड़ बहुत ज्यादा थी।
आप गए थे कि नहीं?
प्रधानमंत्री जी गए थे, पास नहीं गए थे, दूर बैठे थे, भाषण सुने हैं।
क्या बोले?
अरे बहुत कुछ बोले, कहाँ बताए।
मुक्ति का धाम कहा जाता है काशी नगरी, और कबीर साहब ने भी कहा, इसको लोग बुरी निगाह से देखते थे कि मगहर में मरे सो गधा हो, इस विडम्बना को दूर करने के लिए। और कबीर को ही मालूम था कि मगहर कौन सी जगह है, मगहर की हस्ती क्या है, यानी उस काशी नगरी से मगहर की नगरी बहुत ही अच्छी है, और ये मारघरी है, इसको मगहर लोग कर दिए, मारघरी है, यहाँ से हरी तक रास्ता जाता है। और कबीर ने इसको सिद्ध भी कर दिया कि मगर काशी में ना भी मरा, मगहर में मरा, तब भी मैं हरी को प्राप्त करूँगा।
उसी को सर, ये तो कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया कि काशी और मगहर में कोई अंतर नहीं है।
साहेब बहुत सच्चा थे, वो अपने कर्म में से सबके झुके पड़ल, रामानंद स्वामी उनके मंत्र देने में परेशानी पड़ते रह, वैष्णव पंथ कर रहा कि तो जोल्हा के हम मंत्र ना दे, बाकी जब सच्चाई आये तो रामानंद साहेब पकड़ ले, पाँव पकड़ ले।
नहीं तो अब इस तरह की बात होती है यहाँ की? नहीं, गांव में, मगहर में, गांव में
अब ऐसी कोई बातें नहीं है कस्बे में।
पहले लोगों
की ये तो एक विडम्बना थी,
चर्चा थी जो है। हाँ। कि इस तरह की उस भावनाओं को जो है उसने दूर करने के लिए जो है कबीरदास जी यहाँ पे आए कि जो है ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है मगहर में मरने से गधा होता है आदमी, उसी भ्रम को दूर करने के लिए बोले कि हम मगहर में जो है मगहर में ही मरेंगे जो है। मैंने यहाँ गांव के लोग ऐसा नहीं सोचते कि हमारे गांव के बारे में इतनी ख़राब बातें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो बहुत सौभाग्यशाली है जो कबीरदास जी जो है हमारे मगहर में आए जो है।
हम लोग इसके बहुत ही गौरवान्वित होते हैं कि ऐसे संत महापुरुष हम लोग की जन्म स्थली पे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का भी एक
उन्हीं की पहचान से ही जनता से पहचान होती है ना, दुनिया देश के लोग यहाँ आवत आटे।
मगहर उत्तर प्रदेश से कुछ आम लोगों की आवाज़ें, उनसे बात कर रहे थे समीर आत्मज मिश्र। जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। इस यात्रा की हिंदू श्रद्धालुओं के बीच काफ़ी मान्यता है, देश भर से श्रद्धालु इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। अमरनाथ यात्रा श्रद्धा के साथ साथ भारत के एक बड़े हिस्से को कश्मीर से जोड़ने का अवसर भी देती है। इस दौरान बहुत से कश्मीरी लोग इन श्रद्धालुओं की जगह जगह मदद करते हैं। सुनिए माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
यहाँ कोई डरने की बात नहीं है, खुला है, बिंदास है, जब मर्जी आए, यहाँ सभी भाइयों का साथ मिलता है। कश्मीरी भाई हमारे को सहयोग से लेके चलते हैं।
ये दिल्ली से आए हुए कृष्ण कुमार थे, जो बीते कई वर्षों से अमरनाथ की तीर्थ यात्रा पर आ रहे हैं। बीते एक दिन से कृष्ण कुमार पहलगाम के बेस कैंप में रुके हैं और अमरनाथ गुफा के दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं। कृष्ण कुमार की तरह यहां कई श्रद्धालु बर्फानी बाबा के दर्शन के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। कृष्ण कुमार कहते हैं कि उन्हें आज तक कभी कश्मीर आने में डर नहीं लगा है। उनका कहना था कि कश्मीर के बारे में ज्यादा अफवाहें उड़ाई जाती हैं।
यहाँ कोई डरने की बात नहीं है, खुला है, बिंदास है, जब मर्जी आए, यहाँ सभी भाइयों का साथ मिलता है। कश्मीरी भाई हमारे को सहयोग से लेके चलते हैं।
कृष्ण कुमार कहते हैं कि यहाँ आकर कश्मीरी लोग जिस तरह से यात्रियों की सेवा करते हैं वो सराहनीय है।
वो यहाँ सेवा करते हैं कश्मीरी भाई, हम हिंदू भाई जितने भी दर्शन करने सेवा में तत्पर हैं सारे।
मध्य प्रदेश से आए हुए दीपक प्रमोर भी बीते कई वर्षों से अमरनाथ यात्रा पर आते रहे हैं। दीपक कहते हैं कि जो कुछ भी सुनाया कहा जाता है वो लोगों के बीच दरार डालने की एक कोशिश होती है।
मैं यहाँ पे फिफ्थ बार आया और पांचों बार मुझे जो सुनते हैं और मैं भी लोगों को अपने अनुभव बांटता हूँ और लोगों को सिर्फ यहाँ पे एक डिवाइड करने के लिए वो चीजें प्लान की जाती है।
ऐसी ही भावनाएं आम कश्मीरियों के दिलों में यात्रियों के लिए धड़कती हैं जो अम्बरनाथ यात्रा के साथ कई दशकों से जुड़े हुए हैं। चाहे वो घोड़ों पर यात्रियों को बिठाने वाला घोड़ा चालक हो या फिर यात्रियों के लिए टेंट लगाने वाला कोई दूसरा कश्मीरी हो, अपने कारोबार से दिलचस्पी एक तरफ और यात्रियों से मोहब्बत का रिश्ता कुछ जुदा। मोहम्मद शफी बीते 22 वर्षों से यात्रा के साथ जुड़े हुए एक मजदूर हैं जो पहलगाम आने वाले यात्रियों के लिए छोटी सी कपड़ों की दुकान चलाते हैं। मोहम्मद शफी कहते हैं कि लोगों का ख्याल है कि हम शायद पैसों के लिए ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन सिर्फ पैसा ही हमारा केंद्र नहीं है बल्कि मोहब्बत और इंसानियत के रास्तों पर भी हम चलना जानते हैं।
इसके साथ साथ हमारा रोजगार भी होता है, तो ऐसी बात नहीं है कि हम ऐसा बुरा काम करता है। इंशाल्लाह हम बहुत यात्रियों के साथ भी मोहब्बत करता है, प्यार मोहब्बत करता है। आप यात्रियों से भी पूछ लीजिएगा कि कश्मीरी लोग कैसा है।
भट्टाकूट पहलगाम के रहने वाले मोहम्मद अफजल मलिक की 7 पीढ़ियां अम्बरनाथ यात्रा के साथ जुड़ी रही हैं। उनके लिए अम्बरनाथ यात्रा और कश्मीरी मुसलमानों का एक जज्बाती रिश्ता रहा है। वो कहते हैं,
समोतली यात्री चल रही थी और कश्मीरी लोग उनके हमारी माँ बहनें उनके साथ जाते रूफ करते थे, हम देखने के लिए जाते थे।
मलिक उसी खानदान की 7वीं पीढ़ी से हैं जिन्होंने अम्बरनाथ गुफा को खोजा था। गुलाम रसूल बीते 28 वर्षों से यात्रियों को गुफा अपने घोड़ों पर बिठा कर ले जाते हैं।
ये यात्रा लोग आते थे, हम इंतजार में थे कि हमारा यात्रा लगेगा, हम काम करेगा। पिछले सालों से हम ये काम कर रहा है और यात्रियों को बहुत अच्छा सवेद ये शांति मिलता है हमारे से, क्योंकि हम यहाँ का रहने वाला है, हमको पूरा पता है हमको यात्रा कैसा लेना है। अगर बारिश भी पड़ेगा या इनका कोई तुम्बू का हिसाब नहीं होएगा तो हम घर में रखते हैं।
अमरनाथ गुफा का दर्शन करने के लिए हर साल भारत के कोने कोने से लाखों यात्री कश्मीर पहुँच जाते हैं और गुफा का दर्शन करते हैं। श्रीनगर से अमरनाथ गुफा की दूरी करीब 150 किलोमीटर है। अमरनाथ गुफा हिमालयी पहाड़ियों के बीच 12,756 फीट की ऊँचाई पर है। कश्मीर में वर्ष 1990 में हथियारबंद आंदोलन शुरू होने के बाद अमरनाथ यात्रा के लिए हर साल सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। इस साल भी अभी तक 2,00,000 यात्रियों ने गुफा जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। माजिद जहांगीर, BBC, श्रीनगर।
और आइए एक नज़र दिल्ली से छपने वाले अखबारों पर। कुछ गीले से अखबार लग रहे हैं आज, नमी सी है अखबारों में। गुरप्रीत स्टूडियो में आ चुकी हैं।
वो इसलिए लग रहे हैं कि दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है और कल बौछारें भी हुई हैं कुछ, और सभी अखबारों में अलग अलग तस्वीरें इसकी दिख रही हैं। फिलहाल जो बड़ी खबर एक नज़र आ रही है वो ये है कि गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया जो है अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, $1.69 का हो गया। और दैनिक भास्कर में इसकी गिरावट की तीन वजह भी बताई गई हैं। अमरीकी ट्रेड वॉर के कारण एशियाई देशों की करेंसी कमज़ोर हो रही है, ये इसकी एक वजह है। विदेशी निवेशक इक्विटी और डेट मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। जनवरी से अब तक 46 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। इसके अलावा शुजात बुखारी जो राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं, उनकी हत्या के मामले में एक खबर इंडियन एक्सप्रेस में दिख रही है कि उनकी जो हत्या की साजिश थी वो पाकिस्तान में रची गई थी और इसके पीछे लश्कर ए तैयबा चरमपंथी संगठन का हाथ बताया जा रहा है,
ऐसा पुलिस का दावा है।
जी, ऐसा पुलिस का दावा है। गुरुवार को पुलिस ने बात कही है। इसके अलावा स्विस बैंक को लेकर एक खबर है कि स्विस बैंक में जमा भारतीयों का पैसा 50% बढ़ गया है।
मतलब पहले से ज़्यादा रकम जमा हो गई है स्विस बैंक में।
हाँ जी, तो ये कई अखबारों में सुर्खी इसको लिया गया है। भारतीयों का जमा धन 4 साल में पहली बार बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये तो एक ये बड़ी बात है। इसके अलावा एक प्लेन क्रैश की खबर है, उसकी तस्वीरों सहित वो छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में। प्लेन क्रैश हो गया था एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में, जिसकी वजह से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और ये काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जो काफ़ी सारी बिल्डिंगें इसके आसपास दिख रही हैं, ये रिहायशी इलाका था, तो ये हादसा काफ़ी बड़ा हो सकता था, लेकिन इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा नई दुनिया में एक अहम खबर दिख रही है कि ये बहुत ही दर्दनाक खबर है, एक बच्ची 8 साल की जो मंदसौर की रहने वाली थी उसके साथ,
मंदसौर मध्य प्रदेश,
जी मध्य प्रदेश, एक उसके साथ हैवानियत की खबर आई है जिसने कि दिल्ली के निर्भया कांड की यादों को ताज़ा कर दिया है। इस बच्ची के साथ बहुत ही वहशियत की गई है और इसके गुप्तांग के साथ काफ़ी मतलब क्रूर तरीके से उन्होंने जो है किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि निर्भया के साथ किया गया था। लोगों में काफ़ी गुस्सा है और इस बच्चे की 3 सर्जरियां करके जान बचाई गई।
बहुत शुक्रिया गुरप्रीत समाचार पत्रों की सुर्खियां बताने के लिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मौजूद है देश का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कमाटीपुरा, और इस रेड लाइट एरिया में रहती हैं करीब 5,000 सेक्स वर्कर महिलाएं। इन महिलाओं के जीवन में कई समस्याएं हैं जिनमें से एक है बैंक में खाता कैसे खोला जाए, अपने बचत के पैसे कैसे जमा करें। मुंबई से BBC संवाददाता पूजा अग्रवाल की रिपोर्ट सुनिए नवीन नेगी की जुबानी।
मुंबई से सटे कमाटीपुरा को भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में मौजूद एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट इलाके सोनागाछी के बाद कमाटीपुरा का नाम ही लिया जाता है। यहां करीब 5,000 सेक्स वर्कर महिलाएं रहती हैं। इन महिलाओं का कहना है कि भारत में सेक्स वर्क अवैध है, इसलिए उनके जीवन में तमाम तरह की समस्याएं हैं। समाज में इन महिलाओं की कोई पहचान नहीं है, उनके पास उनके होने का कोई आधिकारिक कागजी सबूत नहीं है। लेकिन अब इन महिलाओं के आगे एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। इनके पास अपने कमाए पैसों को जमा करने के लिए जो इकलौता बैंक था वो अब बंद हो गया है। कमाटीपुरा रेड लाइट इलाके में रहने वाली सेक्स वर्कर महिलाओं में ज्यादातर के पास मुख्य धारा के बैंकों में खाते नहीं है। ये सेक्स वर्कर महिलाएं बैंक नहीं जा पाती, इसकी क्या वजह है खुद उन्हीं के शब्दों में सुनिए।
बैंक में नहीं जाते हमारे औरत लोग, बैंक में अभी जो औरत लोग जाते हैं तो इंसर्ट करते हैं उधर।
कुछ सेक्स वर्कर महिलाएं बताती हैं कि खाते खोलने के लिए बैंक उनसे आधार कार्ड और अन्य कागजात मांगते हैं जो उनके पास नहीं है। इस वजह से बैंकों की सेवाएं लेना इन महिलाओं के लिए हमेशा एक चुनौती रहा है। कमाटीपुरा रेड लाइट इलाके में साल 2007 में एक सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी ताकि सेक्स वर्कर महिलाओं की मदद की जा सके। इसका नाम संगनी विमेंस कोऑपरेटिव बैंक रखा गया था। बैंक में 5,000 से अधिक खाते भी खुल गए थे, लेकिन फंडिंग की कमी की वजह से बीते साल दिसंबर में ये बैंक बंद हो गया। सेक्स वर्करों से पैसे लेकर बैंक में जमा करवाने वाली चांदबी बताती हैं,
अभी भी गवर्नमेंट बैंक में तुरंत हमारा खाता नहीं निकलता है क्योंकि हमारे पास खुद का घर नहीं है। कभी बोलेंगे लाइट बिल लेके आओ, कभी बोलेंगे आधार कार्ड लेके आओ, जो घर है उसका ही प्रूफ बन सकता है, जो हम गरीबों का प्रूफ नहीं बन सकता।
संगनी विमेंस कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना सेक्स वर्करों की बैंक संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था। इस सहकारी बैंक के कुछ संस्थापक सदस्यों ने बताया कि संगनी बैंक में सिर्फ एक तस्वीर के आधार पर इन सेक्स वर्करों के बैंक खाते खोल दिए जाते थे। बैंक की स्थापना साल 2007 में अमरीका की एक संस्था से फंड लेकर की गई थी, लेकिन साल 2009 में उस संस्था ने फंड देना बंद कर दिया। इसके बाद इंडिया 800 फाउंडेशन ने बैंक के संचालन की जिम्मेदारी ली, लेकिन कुछ वक्त बाद इंडिया 800 फाउंडेशन भी संगनी बैंक से अलग हो गया। संगनी बैंक को कोलकाता के सोनागाछी रेड लाइट इलाके में चलने वाले उषा कोऑपरेटिव बैंक की तर्ज पर शुरू किया गया था, लेकिन 10 साल में ही इस बैंक ने दम तोड़ दिया। कई सेक्स वर्कर महिलाएं कहती हैं कि इस बैंक ने पैसे बचाने में उनकी काफी मदद की। इसी बैंक में खाता रखने वाली एक सेक्स वर्कर बताती हैं,
जब से ये बैंक बंद हो गया ना तब से हम लोग को भी तकलीफ होने लगा। अगर इधर तुम रख के 500-1,000 रुपए रख के भी चला जाएगा, कोई आके लेके भी जाएगा, यहाँ पे मतलब अपने पास रख देती।
इन महिलाओं को चिंता सता रही है कि जब कपड़े और बर्तन तक चोरी हो जाते हैं तो खुले में पैसे कैसे रखे जा सकते हैं। बहरहाल बैंक के बंद होने के पीछे मुख्य वजह थी फंड की कमी। इसकी वजह से अब कमाटीपुरा में कई औरतों को भविष्य की चिंता सताने लगी है।
मुंबई के रेड लाइट इलाके कमाटीपुरा में रहने वाली महिलाओं की समस्याओं पर रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी। वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं।
BBC समाचार। रूस में जारी फुटबॉल विश्व कप में बीती रात बेल्जियम ने इंग्लैंड को 1 गोल से हरा दिया। इंग्लैंड की टीम बेल्जियम के खिलाफ एक भी गोल नहीं कर सकी। अमेरिका के मैरीलैंड प्रांत में कैपिटल गजट नाम के एक स्थानीय अखबार के दफ्तर पर हमला किया गया है। यहां गोलीबारी में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान में रह रहे करीब 400 शरणार्थी सीरिया में अपने घर वापस लौट गए हैं। सीमा से लगने वाले आरसाल शहर में रह रहे परिवारों ने सामान ट्रकों में लादकर सरहद पार की। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी गुरप्रीत कौर। नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया अभिमन्यु साह ने। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। दीजिए इजाजत। शुभ दिन।